एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार।
और इस ज्ञान यात्रा में आपका साथ देने के लिए हम तैयार हैं।
नमस्कार।
आज हम मानव शरीर की कह सकते हैं अद्भुत दुनिया में उतर रहे हैं। लेस्ली क्लेनरमैन की किताब है ह्यूमन एनाटॉमी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, शरीर रचना विज्ञान का एक संक्षिप्त परिचय, पर जैसा आपने कहा गहरा भी।
बिल्कुल।
और देखिए, ये विषय सिर्फ मेडिकल के छात्रों के लिए ही नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने शरीर को समझना तो हम सबके लिए जरूरी है।
हाँ, आखिर हम इसी में तो रहते हैं। मतलब इसे जानना अपनी सेहत को बेहतर समझने जैसा है, उसका ख्याल रखने जैसा है।
सही कहा। और अक्सर एनाटॉमी का नाम सुनते ही लगता है कि अरे, ये तो रटने वाला बड़ा मुश्किल विषय होगा, सिर्फ हड्डियों अंगों के नाम याद करो।
हाँ बिल्कुल, बोरिंग सा।
पर क्लेनरमैन इस सोच को बदल दे गई हैं। वो इसे एक कहानी की तरह बुनती हैं कि हमारा शरीर कैसे बना, ये असल में काम कैसे करता है,
अच्छा,
और ये लाखों सालों के विकास की कहानी कैसे कहता है। वो सिर्फ क्या नहीं पूछती बल्कि क्यों और कैसे पर जोर देती हैं।
कमाल है। तो ये कहानी बताने वाली लेस्ली क्लेनरमैन है कौन? सिर्फ लेखिका तो नहीं है?
नहीं, वो एक अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मतलब हड्डियों और जोड़ों की माहिर।
ओ, सर्जन।
जी, और साथ ही रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं।
अच्छा, तो मतलब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और पढ़ाने का तजुर्बा भी।
बिल्कुल, और यही बात उनके नज़रिए को खास बनाती है। एक सर्जन के तौर पर उन्हें शरीर का सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि वो असली प्रैक्टिकल ज्ञान है।
हाँ, वो देखती हैं ऑपरेशन टेबल पर कि चीज़ें असल में कैसे जुड़ी हैं।
एग्जैक्टली, कैसे काम करती हैं और जब गड़बड़ होती है तो क्यों होती है। खासकर हड्डियों और मांसपेशियों पर उनकी पकड़, वो किताब में साफ झलकती है।
और प्रोफेसर होने के नाते वो ये भी जानती हैं कि इस मुश्किल जानकारी को हम जैसे आम पाठक के लिए कैसे आसान और दिलचस्प बनाया जाए।
सही, वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ देती हैं, जैसे कोई चोट लग गई या कोई बीमारी हो गई।
तो ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि एक समझ बनाती है। मतलब एक डॉक्टर की नजर और एक टीचर का हुनर, दोनों साथ।
बिल्कुल। अब जरा किताब पर आते हैं। देखिए, इसका लक्ष्य मानव शरीर रचना को सिर्फ तथ्यों के ढेर की तरह नहीं दिखाना है,
तो फिर कैसे?
बल्कि एक कमाल की इंजीनियरिंग, विकास के इतिहास और एक खूबसूरत काम करने वाली कलाकृति के रूप में। ये हमें अपने शरीर को एक तरह से मशीन की तरह देखने और साथ ही एक जीते जागते इतिहास की तरह समझने का न्योता देती है।
हाँ, और आपने कहा कि किताब कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी है।
जी, पहला कि संरचना और कार्य का अटूट रिश्ता है। कोई चीज वैसी क्यों दिखती है जैसी वो है, ये उसके काम से तय होता है।
अच्छा।
दूसरा, हमारा शरीर विकास की कहानी है। ये कोई परफेक्ट डिज़ाइन नहीं है बल्कि लाखों सालों में हुए बदलाव, अनुकूलन और हाँ, कुछ समझौते भी हैं, उनका नतीजा है।
समझौते भी। दिलचस्प। और तीसरा?
शरीर एक एकीकृत सिस्टम है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं करता।
ओके, तो ये तीन मुख्य विचार है।
हाँ, और किताब इसी सोच के साथ आगे बढ़ती है। पहले वो हमें एनाटॉमी की भाषा सिखाती है, मतलब वो खास शब्द जो सटीक वर्णन के लिए जरूरी हैं।
अच्छा, भाषा। जैसे?
जैसे दिशाएं बताना, ऊपर नीचे आगे पीछे, फिर कोशिकाओं और ऊतकों जैसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझाती है।
ओके, बेसिक्स।
और उसके बाद त्वचा, कंकाल, मांसपेशियों से लेकर नर्वस सिस्टम, दिल, फेफड़े, पाचन तंत्र तक हर प्रमुख सिस्टम की यात्रा कराती है। लेकिन सिर्फ ये बताकर नहीं कि कौन सा अंग कहाँ है।
आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कहा एनाटॉमी की भाषा। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये, पर ये जरूरी क्यों है?
सोचिए जरा, अगर डॉक्टर को शरीर के किसी हिस्से के बारे में बताना हो तो दिशाओं और जगहों के लिए एक मानक, एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए ना, वरना कितनी गड़बड़ हो सकती है।
हाँ बिल्कुल, कन्फ्यूजन हो जाएगा।
इसीलिए किताब एनाटॉमिकल पोजीशन को आधार मानती है, मतलब सीधा खड़े हों, हथेलियां आगे की तरफ, फिर सुपीरियर ऊपर, इन्फीरियर नीचे, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, जैसे दिशा बताने वाले शब्द।
अच्छा, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं।
हाँ, लेकिन ये भाषा डॉक्टरों को एमआरआई स्कैन समझने या सर्जरी की योजना बनाने में सटीक संवाद करने में मदद करती है, कोई भ्रम नहीं रहता।
दिलचस्प बात ये भी है कि पहले के जमाने में, जैसे आपने वेसालियस का जिक्र किया, उन्होंने सीधे मानव शरीर का अध्ययन करके पुरानी गलत धारणाओं को चुनौती दी थी।
हाँ, और आज तो एक्सरे, सीटी, एमआरआई जैसी तकनीकें हैं जो हमें बिना चीरफाड़ के अंदर देखने देती हैं।
सही में कितना बदल गया है सब।
बिल्कुल। अच्छा, भाषा के बाद किताब हमें सबसे छोटी इकाई कोशिका सेल पर ले जाती है।
सेल, हाँ, स्कूल में पढ़ा था।
हर कोशिका एक छोटी फैक्ट्री की तरह है, उसकी अपनी झिल्ली है, कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस है, और ऊर्जा बनाने वाले हिस्से माइटोकॉन्ड्रिया।
और कमाल की बात यह है कि कैसे ये सामान्य कोशिकाएं खास काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड बन जाती हैं।
हाँ, कुछ त्वचा बनाती हैं, कुछ मांसपेशी, कुछ हड्डी, कुछ नर्व सिग्नल भेजती हैं। इन्हीं स्पेशलाइज्ड कोशिकाओं के समूह से बनते हैं ऊतक यानी टिश्यूज।
कितने तरह के होते हैं ये टिश्यूज?
चार मुख्य तरह के एपिथीलियल, जो कवरिंग बनाता है, कनेक्टिव जो सपोर्ट देता है, मसल जो मूवमेंट कराता है, और नर्वस जो कम्युनिकेशन संभालता है।
ओके, तो ये शरीर के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हुए।
बिल्कुल।
अच्छा, तो अब आते हैं उस चीज पर जो हमें ढके हुए है, हमारी त्वचा, स्किन।
हाँ, त्वचा। ये सिर्फ एक कवर नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा अंग है।
सबसे बड़ा अंग? अच्छा
जी। इसकी परतें हैं एपिडर्मिस, बाहरी सुरक्षा कवच, डर्मिस जिसमें मजबूती नसें ग्रंथियां होती हैं, और हाइपोडर्मिस जिसमें फैट और इंसुलेशन होता है।
और इसके काम भी कमाल के हैं ना?
बहुत सारे। ये हमें चोट, कीटाणुओं, धूप से बचाती है, तापमान कंट्रोल करती है, हमें स्पर्श महसूस कराती है, और तो और विटामिन डी भी बनाती है।
क्या बात है, ये तो वो संरचना और कार्य वाले सिद्धांत का बेहतरीन उदाहरण हो गया।
एग्जैक्टली।
और त्वचा के नीचे है हमारा ढांचा और उसे चलाने वाली मशीन, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब हड्डियां और मांसपेशियां।
करीब 206 हड्डियां मिलकर हमारा कंकाल बनाती हैं। कुछ हड्डियां जैसे खोपड़ी, रीढ़, पसलियां हमारे जरूरी अंगों की हिफाजत करती हैं।
और कुछ जैसे हाथ पैर की हड्डियां हमें चलने फिरने और काम करने देती हैं।
हाँ, और हड्डियां सिर्फ ढांचा नहीं देती, ये कैल्शियम भी स्टोर करती हैं और खून भी बनाती हैं।
खून भी हड्डियों में?
हाँ, बोन मैरो में। और जहां हड्डियां मिलती हैं वो हैं जोड़ यानी जॉइंट्स। साइनोवियल जोड़ जैसे घुटना, कंधा, ये खास तौर पर मूवमेंट के लिए बने हैं। उनमें चिकनाई देने वाला फ्लूइड और गद्देदार कार्टिलेज होता है
ताकि मूवमेंट आसान हो। और इन हड्डियों को हरकत कौन देता है?
मांसपेशियां।
जी, मसल्स।
लगभग 600 मांसपेशियां, खासकर स्केलेटल मसल्स, जो हमारी मर्जी से चलती हैं। ये टेंडन के जरिए हड्डियों से जुड़ती हैं।
और आपने बताया था ये जोड़े में काम करती हैं?
अक्सर। जैसे बांह को मोड़ने के लिए बाइसेप्स सिकुड़ता है तो ट्राइसेप्स फैलता है, और सीधा करने के लिए उल्टा होता है।
अच्छा।
और ये सिस्टम सिर्फ चलने फिरने के लिए नहीं है, हमारे खड़े रहने का पोस्चर बनाने और शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है।
यहाँ क्लेनेमन का सर्जन वाला अनुभव जरूर काम आया होगा इसे समझाने में।
बिल्कुल, वो इसे सिर्फ किताबी तौर पर नहीं बल्कि एक काम करती हुई जीती जागती मशीन के तौर पर समझाती हैं।
कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं शरीर के कंट्रोल रूम की, नर्वस सिस्टम। ये तो बहुत जटिल लगता है।
हाँ, ये शरीर का सुपर कंप्यूटर है। इसके दो मुख्य हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड,
दिमाग और रीढ़ की हड्डी,
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS यानी बाकी सारी नसें जो शरीर में फैली हैं। ब्रेन तो खैर सोच, समझ, याददाश्त, भावनाओं का केंद्र है ही,
और स्पाइनल कॉर्ड
वो दिमाग से शरीर तक संदेश लाने ले जाने वाला हाईवे है, और कई तुरंत होने वाली क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। PNS का काम है शरीर के बाकी हिस्सों को CNS से जोड़ना। इसका एक हिस्सा सोमैटिक, हमारी मर्जी से चलने वाली मांसपेशियों को कंट्रोल करता है,
जैसे हाथ हिलाना।
हाँ, और दूसरा हिस्सा ऑटोनॉमिक, अपने आप होने वाले काम देखता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, पाचन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता।
अच्छा, ऑटोनॉमिक।
इसी ऑटोनॉमिक के दो मोड हैं, सिंपैथेटिक, लड़ो या भागो मोड, जो हमें तनाव या खतरे के लिए तैयार करता है, और पैरासिंपैथेटिक, आराम करो और पचाओ मोड।
ओ, ये सुना है मैंने, फाइट और फ्लाइट।
हाँ, वही। और इस पूरे नेटवर्क की जान है न्यूरॉन्स, जो बिजली के करंट जैसे सिग्नल से पलक झपकते ही संदेश भेजते हैं।
वाह।
लेकिन कंट्रोल सिर्फ बिजली की तेजी से तो नहीं होता होगा?
नहीं, दूसरा कंट्रोल सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। ये हॉर्मोन्स नाम के केमिकल मैसेंजर इस्तेमाल करता है।
हॉर्मोन्स?
हाँ।
ये खून में मिलकर पूरे शरीर में फैलते हैं और खास अंगों पर असर डालते हैं। ये नर्वस सिस्टम से धीमा है, पर इसका असर ज्यादा देर तक रहता है, जैसे विकास, मेटाबॉलिज्म, मूड, प्रजनन वगैरह पर।
कौन सी ग्रंथियां बनाती हैं ये हार्मोन?
कई हैं, पिट्यूटरी जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, थायराइड, एड्रेनल, पैंक्रियाज और गोनाड्स, सेक्स ग्रंथियां। ये दिखाता है कि शरीर में कंट्रोल और तालमेल के कितने अलग अलग तरीके हैं।
सच में कितना इंटरकनेक्टेड है सब कुछ।
बिल्कुल। अब आते हैं शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल और खून की नसें।
हमारा दिल, ये तो कमाल का पंप है।
हाँ, एक जबरदस्त पंप जो कभी नहीं थकता। ये खून को पूरे शरीर में दौड़ाता है। देखिए, शरीर से आया कम ऑक्सीजन वाला खून पहले दिल के दाईं तरफ आता है, फिर फेफड़ों में जाता है ऑक्सीजन भरने।
ओके।
वहां से ताजा ऑक्सीजन वाला खून दिल की बाईं तरफ लौटता है और फिर पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है।
और इसमें वो वाल्व होते हैं जो खून को वापस जाने से रोकते हैं।
बिल्कुल, दरवाजों की तरह काम करते हैं ताकि खून सही दिशा में ही बहे।
और ये खून जिन पाइपों में बहता है
वो है रक्त वाहिकाएं, यानी ब्लड वेसल्स। आर्टरीज दिल से खून दूर ले जाती हैं, अक्सर ऑक्सीजन वाला। वेन्स खून वापस दिल तक लाती हैं, अक्सर कम ऑक्सीजन वाला। और कैपिलरीज वो बहुत ही बारीक नसें हैं जहां असली लेन देन होता है।
लेन देन मतलब?
मतलब ऑक्सीजन और पोषक तत्व ऊतकों को मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और कचरा खून में वापस आता है।
अच्छा, और खून में क्या क्या होता है?
खून खुद भी एक कमाल की चीज है। इसमें पानी जैसा प्लाज्मा है, ऑक्सीजन ढोने वाले लाल रक्तकण यानी RBCs हैं, बीमारियों से लड़ने वाले सफेद रक्तकण यानी WBCs हैं, और चोट लगने पर खून का थक्का जमाने वाले प्लेटलेट्स हैं।
ओह वाह, पूरा एक सिस्टम है ये तो।
हाँ, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जिगरी दोस्त है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली।
सांस लेने वाला सिस्टम?
जी, इसका काम है हवा से ऑक्सीजन लेना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना। हवा नाक या मुंह से फेफड़ों तक एक रास्ते से जाती है, गला, स्वरयंत्र, श्वास नली।
और फेफड़ों के अंदर क्या होता है?
फेफड़ों के अंदर ये रास्ता छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ता जाता है, जिनके आखिर में अंगूर के गुच्छों जैसी हवा की थैलियां होती हैं, एल्वियोली, बहुत सारी।
एल्वियोली, यहीं पर गैस बदलती है?
बिल्कुल, यहीं पर इन थैलियों की पतली दीवार के आर पार हवा और खून के बीच गैसों का अदला बदली होता है। ऑक्सीजन खून में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड खून से हवा में आती है।
और सांस लेना और छोड़ना कैसे होता है?
वो हमारी छाती की मांसपेशियों और नीचे एक बड़ी मांसपेशी होती है डायफ्राम, उसके फैलने सिकुड़ने से होता है। ये दोनों सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी, मिलकर ये पक्का करते हैं कि शरीर की हर कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहे।
क्या गजब का तालमेल है। चलिए अब खाने के सफर पे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र।
हाँ, ये मुंह से शुरू होकर एक लंबी ट्यूब की तरह है। खाना मुंह में चबाने और लार से मिलना शुरू होता है, फिर भोजन नली यानी एसोफेगस से पेट में जाता है।
पेट में एसिड होता है ना?
हाँ, एसिड और एंजाइम उसे और तोड़ते हैं, लेकिन असली पाचन और पोषक तत्वों का सोखना वो छोटी आंत में होता है।
छोटी आंत? ये तो बहुत लंबी होती है शायद।
हाँ, और कमाल की बात यह है कि इसकी अंदरूनी सतह पर लाखों उंगलियां जैसे उभार होते हैं, विली। ये सोखने के लिए सतह को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। सोचिए, लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना एरिया।
टेनिस कोर्ट जितना? हे भगवान।
हाँ, इसके बाद बड़ी आंत पानी सोखती है और बचा हुआ कचरा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। लिवर, गॉल ब्लॉडर, पैंक्रियाज जैसे अंग भी पाचन में मदद करते हैं अपने रस भेजकर।
ओके, और फिर शरीर की सफाई वो कौन करता है?
वो करता है रीनल या यूरिनरी सिस्टम। इसका मुख्य अंग है किडनी यानी गुर्दे। ये हमारे खून को लगातार फिल्टर करते रहते हैं।
फिल्टर कैसे?
किडनी में लाखों छोटी फिल्टर यूनिट होती हैं, नेफ्रॉन। ये खून से यूरिया जैसे बेकार पदार्थ छानकर अलग करती हैं, जरूरी चीजें जैसे ग्लूकोज, पानी वापस खून में भेज देती हैं, और कचरे को पानी में घोलकर यूरिन यानी मूत्र बनाती हैं।
अच्छा।
ये मूत्र फिर यूरेटर नाम की नलियों से ब्लैडर में जमा होता है और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है।
तो किडनी सिर्फ सफाई नहीं करती?
नहीं, वो शरीर में पानी, नमक का संतुलन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद करती हैं। मतलब होम्योस्टेसिस बनाए रखती हैं।
किताब प्रजनन प्रणाली और एनाटॉमी के भविष्य जैसे इमेजिंग तकनीकें, उन पे भी थोड़ी बात करती है।
वाह, ये तो शरीर की पूरी फैक्ट्री का टूर हो गया।
हाँ, एक तरह से। और इस पूरी यात्रा से कुछ बड़े सबक या थीम सामने आते हैं।
हाँ, बताइए।
पहला और सबसे बुनियादी है, संरचना कार्य को निर्धारित करती है।
स्ट्रक्चर डिक्टेट्स फंक्शन।
हर अंग की बनावट उसके काम के लिए एकदम सही होती है।
जैसा आपने फेफड़ों की एल्वियोली का बताया। हाँ, या दिल का पंप जैसा डिजाइन। ये सिद्धांत हमें प्रकृति में हर जगह दिखता है। हमारी पारंपरिक वास्तुकला में भी यही होता था। डिजाइन उपयोगिता के हिसाब से होता था।
सही बात है। दूसरा सबक क्या है?
दूसरा अहम सबक है, शरीर एक एकीकृत प्रणाली है, बॉडी एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है।
हाँ, जैसे दिल और फेफड़े साथ काम करते हैं।
बिल्कुल, मांसपेशियां नसों के बिना हिल नहीं सकती। पाचन तंत्र को खून चाहिए पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। जब एक सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो उसका असर कहीं और भी दिख सकता है।
ये सोच आयुर्वेद जैसी हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से भी मिलती है ना, जो शरीर को हिस्सों में नहीं बल्कि एक पूरी इकाई मानते हैं।
बिल्कुल सही। तीसरा है होमियोस्टेसिस, यानी अंदरूनी संतुलन बनाए रखने की निरंतर कोशिश।
होमियोस्टेसिस,
हमारा शरीर एक कमाल का रेगुलेटर है। बाहर तापमान कुछ भी हो, शरीर अपना तापमान स्थिर रखने की कोशिश करता है। किडनी पानी और नमक का संतुलन बनाए रखती हैं। ये संतुलन ही जीवन है।
और रोजमर्रा में पर्याप्त पानी पीना या समय पर सोना, ये सब इसी संतुलन में मदद करता है।
हाँ, बिल्कुल।
चौथा विचार थोड़ा अलग है। हमारा शरीर विकास का नक्शा है, एवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट।
अच्छा, ये कैसे?
मतलब ये कोई परफेक्ट इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि लाखों सालों के ट्रायल एंड एरर का नतीजा है। सीधा चलने की क्षमता शानदार है, पर इसी वजह से हमारी पीठ में दर्द होने का खतरा रहता है।
हाँ, ये तो है।
अपेंडिक्स जैसी चीजें हमारे अतीत की निशानियां हैं। इसे समझने से हमें अपने शरीर की ताकतों और कमजोरियों को, उसकी लिमिटेशंस को स्वीकार करने में मदद मिलती है। और आखिरी सबक,
और आखिर में सटीक भाषा का महत्व। एनाटॉमी के शब्द शुरू में डरावने लग सकते हैं, पर वो जरूरी हैं।
क्यों जरूरी हैं?
ये हमें डॉक्टरों से सही सवाल पूछने, अपनी हेल्थ रिपोर्ट समझने या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को परखने में मदद करते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, और अपने शरीर के बारे में सही शब्दावली जानना हमें अपनी सेहत के प्रति ज्यादा जागरूक और सशक्त बनाता है।
ये बात तो है। किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो याद रह जाती हैं, कोई कोट्स या खास विचार?
हाँ, कई हैं। जैसे एक मुख्य विचार ये है, मैंने पहले भी कहा था, किसी अंग की बनावट को समझना है तो पूछो वो करता क्या है। आकार हमेशा काम के लिए होता है।
मतलब सिर्फ देखो नहीं, उसके पीछे का लॉजिक समझो, क्यों ऐसा है।
बिल्कुल। क्यों हड्डियां खोखली हैं, क्यों आंत इतनी लंबी और घुमावदार है, हर डिजाइन के पीछे एक फंक्शन है।
एक और जोरदार बात आपने बताई थी, मानव शरीर अलग अलग पुर्जों का जोड़ नहीं बल्कि जुड़े हुए सिस्टम्स का एक ऑर्केस्ट्रा है। एक सांस भी बेसुरेगा तो संगीत बिगड़ जाएगा।
हाँ, ये समग्र स्वास्थ्य होलिस्टिक हेल्थ की अहमियत बताता है। सिर्फ लक्षण का इलाज काफी नहीं, पूरे सिस्टम के संतुलन को देखना होगा।
सही, एक छोटी सी गड़बड़ी का असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है।
बिल्कुल, विकास वाले पहलू पर यह बात गौर करने लायक है। हमारा शरीर विकास का जीता जागता म्यूजियम है। इसमें शानदार अनुकूलन है, पर साथ ही कुछ समझौते और डिजाइन की कमियां भी हैं जिनके साथ हम जीते हैं।
ये हमें यथार्थवादी बनाता है। हमारा शरीर अद्भुत है पर अजेय नहीं। अपनी सीमाओं को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है।
सही। और आज की एनाटॉमी पर, आधुनिक एनाटॉमी सिर्फ मुर्दा शरीर को काटने तक सीमित नहीं। टेक्नोलॉजी हमें जिंदा, काम करते हुए शरीर के अंदर झांकने और उसे समझने का अभूतपूर्व मौका देती है।
हाँ, MRI और CT स्कैन जैसी चीजों ने एनाटॉमी को वाकई डायनामिक बना दिया है। अब हम सिर्फ ढांचा नहीं, काम करते हुए शरीर को देख सकते हैं।
बिल्कुल, ये क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है।
तो इस सब ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
सबसे पहला तो यही कि हम अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सूचित फैसले ले सकते हैं। अगर डॉक्टर स्लिप डिस्क या अस्थमा की बात करते हैं तो हमें थोड़ा अंदाजा होता है कि अच्छा, शरीर के इस हिस्से में ये हो रहा है, हम बेहतर सवाल पूछ पाते हैं।
और दूसरा, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से बेहतर बातचीत कर पाते हैं ना?
हाँ, मेडिकल शब्दों का डर कम होता है, अपनी तकलीफ ज्यादा साफ बता सकते हैं और उनकी सलाह बेहतर समझ सकते हैं। जैसे भारत में योग या कसरत करते हुए ये जानना कि कौन सी मांसपेशी खींच रही है या किस जोड़ पर असर पड़ रहा है, ये सही तकनीक अपनाने और चोट से बचने में मदद कर सकता है।
सही बात है। तीसरा क्या है?
तीसरा, अपने शरीर के लिए एक गहरी प्रशंसा और जागरूकता पैदा होती है। जब हम इसकी जटिलता और कुशलता को समझते हैं तो हम इसका ज्यादा सम्मान करते हैं। शायद हम स्वस्थ आदतें इसलिए अपनाएं क्योंकि हम इस कमाल की मशीन का ख्याल रखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ डर से।
हाँ, सम्मान से। कभी शांति से बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देना और उसके पीछे के पूरे सिस्टम को महसूस करना, ये भी एक अलग अनुभव देता है।
बिल्कुल। और चौथा, स्वास्थ्य से जुड़े भ्रामक दावों के प्रति सतर्कता बढ़ती है।
तो हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल।
आजकल हर तरफ चमत्कारी इलाज और डाइट के दावे दिखते हैं। शरीर कैसे काम करता है, इसकी बुनियादी समझ हमें ये परखने में मदद करती है कि क्या वैज्ञानिक रूप से संभव है और क्या सिर्फ मार्केटिंग का खेल है। भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाएं आसानी से फैलती हैं, ये हुनर बहुत जरूरी है।
ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे यादगार या आश्चर्यजनक बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। शरीर वाकई एक अविश्वसनीय रूप से एकीकृत इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। एक चीज का असर दूसरी पर पड़ता ही है। यह स्वास्थ्य और बीमारी को देखने का नजरिया बदल देता है। ये सिर्फ एक अंग की समस्या नहीं, पूरे सिस्टम के संतुलन की बात है। शरीर रचना को समझना एक तरह से खुद को ही समझना है।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात शायद ये थी कि त्वचा जैसी चीज, जिसे हम बस एक बाहरी परत समझते हैं, वो असल में हमारा सबसे बड़ा अंग है और कितने सारे जरूरी काम करती है। और वो विकास वाले समझौते वाली बात भी कि कैसे सीधा चलना फायदेमंद है पर पीठ दर्द का कारण भी, ये देखना दिलचस्प था।
हाँ, ये विरोधाभास भी शरीर का हिस्सा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकिता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।